पथ विचार।
आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, ये शब्द आपने सुना है। इस पर मनन करना चाहिए। हमें मनुष्य चोला प्राप्त हुआ है, पता नहीं कितने जन्म हमने भोगे होंगे, पशु बने होंगे, कीटाणु बने होंगे, वनस्पति बने होंगे, उसके बाद ये मनुष्य चोला प्राप्त हुआ है। परंतु खेद की बात है, ये चोला सब जीवों से अधिक महत्वपूर्ण है। इसी चोले में व्यक्ति अब जन्म मरण के चक्कर से छूटने का उपाय कर सकता है और किसी जन्म में नहीं कर सकता। जिसको हम मोक्ष कहते हैं, अति गंभीर विषय है। कभी हम सोचते नहीं, मनन नहीं करते हैं कि हम कौन हैं, पहले क्या थे, अब क्या हैं, और आगे जो कुछ हमने बनना है उसके लिए हम क्या उपाय कर रहे हैं, कोई नहीं सोचता। ये माया का प्रभाव है, अज्ञान का प्रभाव है, अंधकार है, इसको कहते हैं। हम सब माया रूपी कीचड़ में फंसे हुए हैं। जो अशिक्षित है, हम कह सकते हैं ये मूढ़ है, अज्ञानी है, परंतु जो अपने आप को शिक्षक मानते हैं, पढ़ा लिखा व्यक्ति मानते हैं, बड़ी ऊंची विद्या ग्रहण की है, उनकी स्थिति देखी जाए वो अज्ञानियों से भी गिरी हुई है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति सतर्क नहीं है। जिनको हम संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, क्षमा करेंगे कि वो भी ऊंचे स्तर पर अभी नहीं पहुंचे। महापुरुष कोई मंदिर बना रहे हैं, गुरुद्वारे बना रहे हैं, मस्जिदें बना रहे हैं, अपना नाम रोशन कर रहे हैं, और ये चीजें बनाने में आजकल जिस प्रकार की सभ्यता से हम गुजर रहे हैं, बेईमानी, सब बातें बेईमानी की। आप एक मकान बनाना चाहें तो आप देखिए कितनी बेईमानी मकान बनाने वाले को करनी पड़ती है। वो सही बनाता है मकान, सही इनकम दिखाता है, तो सरकारी कर्मचारी मानने को तैयार नहीं। इसी तरह अन कभी व्यक्ति चाहे भी कि वो सच्चाई से काम कर ले, वो नहीं कर पाता। तो ईश्वर के चरणों तक पहुंचने के लिए हम सब अशिक्षित हैं, दुर्बल हैं, बड़ा कठिन है। और जब तक मनुष्य चोला मिला, इसीलिए मन तो ज्योत स्वरूप है, तो वही परमात्मा की अंश है। अपना मूल पहचान तत्वसी, तू तो ब्रह्म है, परमात्मा है, कहाँ भूला भटका हुआ है। हम सब मन के पीछे लगे हुए हैं, संसार के पीछे लगे हुए हैं, माया के पीछे लगे हुए। हमारा जीवन का महत्व क्या है, हमने क्या करना है, उसके प्रति हम तनिक भी सतर्क नहीं। ये तो ईश्वर की कृपा है कि मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। ये इसलिए प्राप्त हुई है कि अगला चरण जो है अपनी आत्मा को परमपिता परमात्मा में विलय करने और सदा सदा के लिए परमात्मा ही बन जाना, अमर हो जाना, ये जीवन का लक्ष्य है। परंतु हम सब भूले हो, ईश्वर की कृपा से ये मनुष्य वाला मिला, परंतु इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। कुछ तो परिस्थितियों की विवश हम ऐसा करते हैं, कुछ मनुष्य की अपनी कमजोरियां भी हैं, उसके अंतर में राजा हरिश्चंद्र की तरह सच्चाई नहीं है। राजपाट छोड़ दिया, गरीबी इतनी आ गई कि शमशान घाट में जाके नौकरी कर, स्त्री को छोड़ दिया, पुत्र को छोड़ दिया, किसी कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती है, स्त्री बच्चे को लेके शमशान भूमि पहुंचती है। राजा जान लेता है ये मेरा बच्चा है, स्त्री पहचान लेती है ये राजा मेरा पति है। वो प्रार्थना करती है, प्रभु इस बच्चे को लकड़ियां जला के इसकी अंतिम संस्कार कर दीजिए। पति क्या कहता है, मैं इस वक्त नौकरी कर रहा हूं, तुम पैसे पहले लाओ लकड़ियों के लिए, तब इस बच्चे का संस्कार किया जाए। तो धर्म पत्नी के पास एक पैसा नहीं है, राजा ने सब कुछ दे दिया, तो पत्नी के पास क्या रहना था, उसने भी सब कुछ दे दिया, अब वो कहां से लाए। इस परिस्थिति में कौन आदमी होगा जो जीवित रह सकता है, बच्चे की लाश सब समझ माँ खड़ी है, पति से कह रही है कि इसका अंतिम संस्कार कर। और वह राजा हरिश्चंद्र सच्चाई के कारण कहता है, नहीं मुझे कुछ पता नहीं, लकड़ी के लिए पैसे लो, ले जा बच्चे को, मुझे नहीं पता। ये धर्म है, ये कर्म है, क्या हमारे पास इतनी सच्चाई है? हम धर्म के नाम पे बड़े नारे लगाते हैं, क्या हमारा ऐसा धर्म है? प्रभु प्रकट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, प्रभु पैसे देते हैं, राजा हरिश्चंद्र का धर्म भी दृढ़ रहता है और उसका उद्धार भी हो जाता है। तो मनुष्य चोला मिला है कि अगला जो चरण है प्रभु की चरण रज प्राप्त करने के लिए, उसके लिए धर्म का जीवन व्यतीत करने का भरसक प्रयास करें। हम जब दीक्षा लेते उस वक्त ये शब्द लेते, हम ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो इस शब्द के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हम विवश हैं, मेरा ख्याल है एक भी व्यक्ति नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं है जो आप धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर। दिखावे के तो हैं, मुसलमान मुसलमान सभ्यता के अनुसार कपड़े पहने, तब वो समझता है यही सभ्यता है, यही आत्मिकता है, हिंदू भी पहन लेता है, सिख भी पहन लेता है, परंतु धर्म की गहराई को कोई नहीं समझता, ना धर्म के रास्ते चलने का प्रयास करता है, करते हैं तो सफल नहीं। हम जीवन इतना इस प्रकार का वर्ण क्या है, कोई व्यक्ति चाहे भी कि वो धर्म का जीवन व्यतीत कर ले, वो कर नहीं सकता। आप निर्मला माता जी का नाम सब जानते हैं, बड़ी मशहूर है। एक बार मैं उनको मिलने गया, ये कहने लगी, बड़ी दुख की बात है मैं दिल्ली में मकान बनाना चाहती हूँ, इसके लिए धरती लेना चाहती हूँ, ज़मीन। कोई व्यक्ति मुझे ज़मीन बगैर ब्लैक मनी के बेचने के लिए तैयार नहीं। मैं सब रजिस्ट्री के लिए तैयार हूँ, परंतु बेचने वाला ये बात मानता ही नहीं। एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला, मैं क्या करूँ? ये शुरू शुरू में जब आई हैं, आज से मेरे घर 25 साल की बात, 20-25 साल। और भी लोग हैं ऐसे, व्यक्ति विवश करे क्या? वो ये छोटे मोटे आदमी की बात नहीं, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं। देश से बाहर जो लोग रहते हैं, उनको हिंदुस्तानी पैसा खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होती, उनके पास काफी डॉलर पाउंड होते हैं। परंतु हमारे देश के लोग टैक्स नहीं देना चाहते, और दे भी दें तो उसके साथ और कई समस्या खड़ी हो जाती हैं। सच्चाई से आदमी शुरू भी करे काम तो और कई समस्या खड़ी हो जाती हैं, जिससे निकलना बड़ा मुश्किल है। दफ्तर में 5-7%, 8% बाबुओं को देना पड़ता। बाहर के लोग ऐसा करना नहीं चाहते। ये अड़चनें सबके साथ आती हैं। पता नहीं बाद में उन्होंने कोई ज़मीन ली कि नहीं, मुझे याद नहीं है, काफ़ी दिन हो गए उनसे भेंट किए हुए। और भी कई महापुरुष हैं, पर सब विवश हो जाते हैं करते। अब मुझे मालूम नहीं है कि निर्मला जी ने कोई अभी बिल्डिंग अपनी बनाई है कि नहीं। तो जब तक सात्विकता को नहीं अपनाएंगे, पहले तामसिकता को छोड़ेंगे, रजोगुण को छोड़ेंगे और सात्विक गुण, आगे चल के आत्मिकता को अपनाना है। जब तक बिन गुण कीते भक्त ना हो, आप कहते हैं भक्ति में सफलता हो, हमारा जीवन गुणों के आधार पर है ही नहीं, सात्विक गुणों के आधार पर है ही, तो सफलता कहाँ मिलेगी? प्रत्येक व्यक्ति कहता है मेरा मन नहीं लग रहा, इतने साल हो गए सत्संग में आते हुए कुछ सफलता नहीं मिली। जब उनसे बात करते हैं, करते क्या हो? क्षमा करेंगे? इतनी बातें सुनाते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं हम करें क्या, ऐसे वातावरण में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बिना बुराई किए हुए हम एक सेकंड भी नहीं जी सकते। दोष देते हैं दूसरों को, वो करते नहीं हैं कि उस वातावरण से निकल कर बाहर आ जाएं, कर नहीं पाते क्योंकि आर्थिक कठिनाई आ जाती है। इतनी हिम्मत है नहीं कि अमीरी से गरीबी का जीवन व्यतीत करें, इतनी हिम्मत हम में नहीं। जहाँ 3-3, 4-4 गाड़ियाँ रखी हों और वो उनको छोड़कर सात्विक जीवन व्यतीत करने के लिए साइकिल भी न रख सकें, ऐसा करने की हमारी हिम्मत नहीं। यही कारण है कि देश दिन ब दिन गिरता जा रहा है। हम नारे लगा देते हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, फलाने हैं, ये सब गलत है। राजा हरिश्चंद्र की तरह जीवन व्यतीत करना होगा। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए ईश्वर बनना पड़े। और कोई रास्ता नहीं, बड़ा कठिन है। जो तो प्रेम किरण का चाव, सिर दर तली गली मोरिया। तुम्हें प्रेम की क्रीड़ा में सम्मिलित होना है, रासलीला भगवान कृष्ण की रासलीला में सम्मिलित होना है। तो अपने हाथ में अपना सर काट के, अर्थात अहंकार को काट के, दीन तो अपना के मेरी गरी आओ, मेरे पास गरीब बनकर आओ, अनाथ बनकर आओ। सत्यता के विभूषण पहनो, समर्पण के जेवर पहनो, बलिदान के जेवर पहनो। इस संसार में रहते हुए दुख आएगा, दुख दारू सुख रोग भया। जिसने दुख को नहीं अपनाया, गरीबी को नहीं अपनाया और सुख अपनाने की कोशिश की है, उनको जानना चाहिए सुख एक रोग है, क्रॉनिक डिजीज है। परंतु क्या करें, बुरा न माने, हम सब लोग सुख के भिखारी हैं। कोई भी ईश्वर से प्रार्थना नहीं करता कि प्रभु मुझे तू दुख दे। और महापुरुष कहते हैं दुखदार जिनकी हम अनुयायी हैं उनकी बात मानने की तैयार है। ये रास्ता अग्नि पर पांव रखकर चलने वाला है। इससे रास्ते पर दुख भी आएंगे, सच्चा अधिकारी उनको उनका स्वागत करता है। भगवान कृष्ण कहाँ जाते हैं? दुर्योधन कहता है, आप मेरे सदनों के 56 प्रकार के खाने छोड़ के आप दासी पुत्र, उसके पिता की दासी थी, उसका पुत्र था ये विदर्भ, उसके घर रात्रि जाते हैं, रात्रि रहते हैं। तो भगवान कृष्ण उसको जवाब देते हैं, अरे मूर्ख तू क्या जाने, वो विदर जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए और बगैर नमक के वो पाले का साग कच्चा पका रात को खिलाता है और रात को भजन गाकर सुनाता है, वो उसकी सादगी सरलता में जितना आनंद है, तेरे 56 प्रकार के भोजन में क्या रखा है? इसमें तो अहंकार है। ये भोजन तो बड़े हैं लोगों का खून चूस कर। हम सबको विदुर बनना पड़ेगा, तभी भगवान कृष्ण हमसे रीझेंगे। वो तो सादगी पर फटे पुराने कपड़ों पर बिना नमक के साग खाते हैं पालक का, बिना पका हुआ साग, उनको बड़ा आनंद आता है। उसमें परंतु कठिन है अमीरी को का प्रत्याग करना, गरीबी को, दीनता को, हलीमी को अपनाना अति कठिन है। कठिन सच्ची। और कुछ वातावरण हमारे देश का कुछ ऐसा बन गया है कि हम चाहें भी तो सच्चाई का भोजन नहीं खा सकते, कोई भी नहीं। वो एक पिक्चर आई थी, उसका टाइटल था हम सब चोर हैं। वास्तव में हम सब चोर, ईश्वर कैसे नहीं मिल सकते? भगवान गीता में ये समझाते हैं, मोह का प्रत्याग करो। क्या हमने प्रत्याग कर दिया? विदुर जैसे भक्त बन जाइए, ईश्वर मिल जाए। ईश्वर दौड़ कर आता है आपके घर, रातों रहता है और उसको खुशी वहां मिलती है, उसको आनंद मिलता है। और किसी को सच्चाई से बात करें तो वो कहता है क्या करें, जीना ही कठिन हो जाएगा। वो कहते हैं हम टैक्सी सब पूरी दे दें तो रात को बच्चों के लिए खाना कहाँ से लाएंगे। सच्चाई ये परिस्थितियाँ ऐसी बन गई, मजबूर है, किसी एक व्यक्ति का दोष नहीं है, परंतु जिसने ईश्वर को पाना है उसको विदुर बनना है, उसको राजा हरिश्चंद्र बनना है, उसको हनुमान बनना है। हनुमान ने कुछ नहीं मांगा भगवान से, तब भी मेरे आपके चरणों में प्रार्थना है कि जितना भी हो सके हमसे उतना हम सत्यता का जीवन व्यतीत करने का भर से प्रयास करें। हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए, जैसा अन्न वैसा मन और वैसा जीवन बनेगा। जो चटपट के खाने खाएंगे उनका मन भी चटपटा होगा और उनका व्यवहार भी चंचलता का होगा, क्रोध क्रोधी होगा और कामनाओं से ग्रस्त होगा। इसीलिए सभी महापुरुषों ने कहा है सात्विक भोजन जो तुरंत हजम होने वाला हो और सत्य की कमाई से बना हुआ, तो जितना भी संभव हो उतना करना चाहिए। क्या करें, जिस देश में रह रहे हैं और जिस देश की संस्कृति को हमने पकड़ा है हम विवश हैं, तब भी इन परिस्थितियों में भी कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कि एक दो चार जन्म में नहीं तो 10 जन्म में हमारा उद्धार हो जाए, पर उद्धार तभी होगा जब हम ईश्वर ही बन जाए, उससे पहले नहीं। तू तू करता तू ब्याह मुझ में रही न हूँ, आपा पर का मिट के अंजत देखा कर। ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर बनना ही, इससे कम नहीं। और दुर्भाग्य है कि ईश्वर आप सबके भीतर में विराजमान है, आपके पास है, परंतु अनुभूति नहीं हो रही। दोष किसका है? दोष हमारा अपना, वो तो झांक रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। कि कब वो भीतर से प्रकट हो। यशोदा बड़ी सात्विक वृत्ति की है, परंतु बच्चों को सिखाने के लिए कभी कभी माँ को हिंसा भी करनी पड़ती है। बच्चों को विशेषकर भगवान कृष्ण को देखती है कि इनका स्वभाव हो गया है, मधानी से ऊपर रखा होता है, मधानी ऊपर रखी होती है, सीढ़ी रखकर या बच्चों को सीढ़ी बनाकर वो मक्खन उसमें से निकाल लेते, चोरी कर लेते। तो भगवान कृष्ण भी ये लीला किया करते थे। तो माँ ने देखा, यशोदा ने देखा, पाला था यशोदा ने, माँ देवकी थी। ये बड़ा चंचल लड़का है, पकड़ लिया उसे, छड़ी ले ली हाथ में, तू मक्खन क्यों चोरी करता, तो मेरे से मांग, जितना मांगेगा मैं तुम्हें दूंगा। वो कहता माँ मैंने मक्खन खाया ही नहीं, मैं चोरी कर रही हूँ। माँ उसको रस्सी से बांध लेती है, पाँव में बांध देती है, ऊपर लाठी कर दी और छड़ी ले लेती हाथ में, तो झूठ बोलता है। और एक दो छड़ी लगा दी और डांट के कहने लगी, मुंह खोल। एक दफा भगवान ने सुना नहीं, एक छड़ी और लगाई। अच्छा कहते नहीं मां खोलता, अच्छी तरह देख ना मां। वो मुंह खोला, यशोदा वो देख ही नहीं पाई दृश्य को जो भगवान के भीतर में था। वो बेहोश हो जाती है। ऐसे दृश्य इसने पहले कभी ना देखे हो, और उसका शरीर इतना बड़ा नहीं है, ऐसे शरीर की शक्ति को सहन करने के लिए वो मूर्छित हो जाता, कई लोग मर भी जाते हैं। तो वो परमात्मा का दर्शन कर नहीं पाए। महापुरुषों ने चार पद लिखे हैं इस पर, इसमें एक लाइन मुझे याद है, सतसाच श्री निवास आदपुरुष सदा तू ही, और उसी भावुकता में आकर स्वयं ही कहने लगे वाहे। वो दृश्य देखा नहीं, दृश्य बयान कर रहे हैं, बयान करते करते आदमी विस्वाद में चला जाता है, वाहे क्या कहो प्रभु क्या कहो, वाहे वाहे मूर्छित हो जाए। चार पद हैं पढ़ने वाले, तो ये दर्शन किसको हो सकते हैं? और जिसको होते हैं वो बर्दाश्त सह नहीं कर पाते, और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। फिर इधर उधर के और लोगों ने देखा, उनकी रस्सियां खोली, वो बालक वहां से दौड़, माँ को होश है, दौड़ रही है बालक के पीछे। ओ कृष्ण कहाँ जा रहे हैं, ओ मेरे बालक, ओ मेरे मालिक। ये देश तो जरूर था परम पिता परमात्मा का, परंतु एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, केवल एक सेकंड या दो सेकंड या एक मिनट ऐसा दर्शन कर लेने से हमारा जीवन का लक्ष्य उसी वक्त पूरा नहीं हो जाता। वो ईश्वर की कृपा है, हाँ उससे प्रेरणा मिल जाती है, हमें अधिकार मिल जाता है, हमारा रास्ता सुगम हो जाता है। इसमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। कई लोगों को कई प्रकार के अनुभव होते हैं, तो ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हम सब कुछ बन गए हैं। आगे चलो और आगे चलो और आगे चलो, इसकी कोई मंजिल नहीं है, बेअंत है। मनुष्य को जब अनुभूति आती है तो वो आगे बढ़ नहीं सकता, जितना बड़ा वहीं रह जाता है। पूर्ण दर्शन आज तक मेरे ख्याल में किसी को नहीं। तो संक्षिप्त में पुनः निवेदन आपको कर दूं कि जैसी भी परिस्थितियां हैं, साहस के साथ दृढ़ संकल्प के साथ जितना भी संभव हो प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो जीवन का लक्ष्य है उस तरफ बढ़े, धीरे धीरे कोशिश करें। ये सत्य है कि बहुत बाधाएं हैं, कुछ तो दिख रही हैं कुछ आती हैं, तब भी एक जन्म में नहीं तो नींव रख लें, शायद दूसरा जन्म मनुष्य का मिल जाए, तब करेंगे, फिर तीसरे चौथे में चलते चाहे रास्ता रोके नहीं आप, किसी जगह में जाके खड़े ना हो जाए कि यही मंजिल है। वो बेअंत है, बेअंत है। पूज्य गुरुदेव आप सबको शक्ति दें, आप सबका कल्याण करें।